تفسیر سورت یوسف آیت نمبر 54. یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے وہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جیل سے چھوٹتے ہیں بلکہ عملاً پورے مصر کی حکومت ان کے انگوٹھے کے نیچے آ جاتی ہے، ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے. تو ہم اسے پڑھتے ہیں. وقال الملک، اور بادشاہ نے قاصد سے کہا، ایتونی بہی، کہ اسے میرے پاس لاؤ. ایتونی، لاؤ میرے پاس، لے آؤ میرے پاس. بہی اس کو، ہی کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے. استخلصو، میں اس کو مخصوص کروں گا، یہ نفسی اپنے لیے، میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. استخلصو، اس کا روٹ ہے خا لام سواد، خا لام سواد، اس کے معنی ہے خالص کر لینا، مقرر کر لینا، پسند کر لینا. تو استخلصو لنفسی، میں نے اس کو اپنے لیے جو ہے وہ مخصوص کر لیا ہے، خاص وہ میرے لیے ہے. فلما کلمہ، پھر جب اس نے بات کی اس سے، پھر جب بادشاہ نے اس سے گفتگو کی یوسف علیہ السلام سے، قالا، کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو. اس نے کہا اب ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ قدر و منزلت رکھتے ہیں. انک الیوم لدینا مکین، یعنی آج سے آپ کے لیے ہمارے پاس، مکینن جو ہے جیسے ایک مکان ہے، میم کاف نون، مکان، مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ ہونا. تو آج سے آپ کے لیے ہمارے پاس جو ہے جگہ ہے. امینن، امینن امن امانت سے ہے، اور ہمیں آپ کی امانت پر بھروسہ ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جو بادشاہ تھا جس کا نام ریان بن ولید بتایا جاتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ، ان کے کردار کی رفت اور بلندی سے وہ بڑا متاثر ہوا، اور خواب کی وہ تعبیر جو اس کے مشیروں کو نہیں آتی تھی، کسی کو بھی نہیں آتی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ مشکل دنوں کے لیے مشورہ دیا، پلاننگ بتائی کہ مشکل دنوں میں کیا کرنا چاہیے. اور تیسری بات، یوسف علیہ السلام کا کردار کہ بے گناہ تھے اور جیل میں ڈال دیے گئے، اور جیل سے نکلنے سے پہلے ان کے جو کردار کی پختگی تھی، عظمت تھی، بلندی تھی، پاک دامنی تھی، جب وہ واضح ہو گئی تو حکم دے دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کیا جائے. میں نے خاص اسے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا، میں اسے اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. اور مکینن، مرتبے والا. امینن جو ہے وہ امانت پر بھروسہ، یا پھر یہ کہ جو ملک کے خاص راز ہیں، کیونکہ اس کا کردار بڑا اچھا ہے تو ملک کے جو خاص راز ہیں میں وہ راز اس کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنا رازدان بنانا چاہتا ہوں. قال یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے. یہاں پہ خزائن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا واحد ہے خزانہ، خزانہ تن جو ہے واحد ہے، اور خزائن اس کی جمع ہے. معنی ہے خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، جیسے زمین کے خزانوں سے مراد ہے وہ سٹور یا گودام جہاں غلہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایسی جگہیں اور ان کی چابی کا ہونا اور اس کی حفاظت کرنا، تو اب یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ اجعلنی، مقرر کر دیے مجھے، علی خزائن الارضی، ملک کے خزانوں پر. یہاں پہ الارض سے مراد جو ہے ملک ہے. इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और खूब जानने वाला हूं। तो अब आप देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन दो लफ्जों में तमाम औसाफ को जमा कर दिया। एक वजीर खजाना के अंदर, एक वजीर मालियात के अंदर जो औसाफ होने चाहिए वो उन्होंने बयान किए। पहला वस्फ क्या होना चाहिए? हिफाजत करना। तो हिफाजत कौन करता है? जो ईमानदार होता है कि वो बैतुल माल को या सरकारी माल को जाया ना होने दे, उसको पूरी हिफाजत से जमा करे और गैर मुस्तहिक लोगों में नहीं, गलत किस्म के लोगों में नहीं, बल्कि ठीक और अच्छे लोगों में फिर उसको तकसीम कर दे। और अलीम, अलीम जो है इसका मतलब होता है खूब जानने वाला। तो दूसरी सिर्फ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी से तारुफ करवाया वो उसके माने ये थे कि मुझे खूब पता है, मैं खूब जानता हूं कि कहाँ खर्च करना है और कितना खर्च करना है और जो है वो खर्च करते वक्त किस किन बातों का ख्याल रखना है। तो हफीजुन के मानी ईमानदार और हिफाजत करने वाला, और अलीमुन जो है उसके मानी कि जितना जरूरी होगा उतना जो है मैं खर्च करूंगा। इन्नी हफीजुन अलीम। अच्छा, इस सिलसिले में जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है ये कहना कि मुझे ये जिम्मेदारी दे दी जाए, तो इस सिलसिले में बाज लोग जो है वो ये कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिम्मेदारी मांग कर ली, हालांकि जो है ओहदा तलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया कि ओहदा या जिम्मेदारी मांग कर ली जाए, और अगर कोई मांगे तो उसको देना भी नहीं चाहिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन सुमरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमीर बनने का सवाल ना करना। अमीर का मतलब रिच नहीं, जैसे अमीर का मतलब है कोई जिम्मेदारी, जैसे किसी जगह का गवर्नर या आमिल। तो कहा कि अमीर बनने का सवाल ना करना, क्योंकि अगर तेरे सवाल करने पर अमारत तेरे सुपुर्द कर दी गई तो तू इसके सुपुर्द कर दिया जाएगा, अल्लाह तेरी मदद नहीं करेगा, और अगर तुझे बगैर सवाल के जिम्मेदारी दे दी गई तो अल्लाह की तरफ से इस पर तेरी मदद की जाएगी। इसे बुखारी ने रवायत किया है। फिर एक मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम हम अपने काम पर ऐसे शख्स को नहीं लगाते जो इसका सवाल करे या इसकी हिर्स करे। इसे भी बुखारी ने जो है वो रवायत किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ओहदा का मुतालबा क्यों किया? तो मुफस्सरीन कहते हैं कि आम हालात में खुद से ओहदा तलब नहीं करना चाहिए, और जो ओहदा तलब करे उसे नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अगर कोई शख्स ये समझे कि मेरे अलावा फराइज को पूरा करने वाला कोई नहीं है और इस फर्ज को या इस जिम्मेदारी को सही तौर पर अंजाम देने के लिए जो सलाहियत होनी चाहिए, जो औसाफ होने चाहिए, कोई शख्स ये समझे कि ये मेरे अंदर है और मैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूं, तो ऐसे शख्स के लिए जायज है कि वो आगे बढ़कर जो है वो जिम्मेदारी जो है उसको लेने की बात करे और उसको अच्छे तरीके से जो है वो संभाल ले। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे और उन्हें अल्लाह की मदद की उम्मीद भी थी और उन्हें पता था कि अगर ये जिम्मेदारी मेरे पास आएगी और तो दावा का भी मेरे लिए एक अच्छा मौका होगा, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि जिम्मेदारी को कबूल किया बल्कि उन्होंने बादशाह को मुतमिन करने की कोशिश की। कैसे? उन्होंने बादशाह को ये बात बताई कि इन्नी हफीजुन अलीम, कि बेशक मैं हिफाजत करने वाला और खूब जानने वाला हूं। और दूसरी बात ये कि जैसे कराइन से पता चल रहा था, जो ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी, जो बाकी लोग थे उन्होंने तो ये कहकर जो है बादशाह को जो है वो माजरत कर ली थी, क्योंकि उनको तो ख्वाब की ताबीर ही नहीं आई थी, तो उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि अदगासु अहलाम, कि ये परेशान कौन ख्वाब की बातें हैं, कोई इसकी हकीकत नहीं है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी अच्छी ताबीर जो है वो बताई है। आयत नंबर 56 सूरत यूसुफ, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफा फिल अर्द, इसी तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की। यहाँ पे मक्कन्ना का लफ्ज जो है ये अहम है, और इसके मानी है कि हमने जगह दी, हमने कुदरत दी यूसुफ को फिल अर्दी जमीन में, और जमीन से मुराद जो है ये मिस्र का मुल्क है। तो उस मुल्क में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जगह दी। ये तबव्वाउ मिन्हा हैसु यशा, ये तबव्वाउ जो है ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी है यानी उतरना, जगह पकड़ना, किसी जगह पर जो है वो करार हासिल करना। तो अब सारी सरजमीन जो मिस्र की थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी, उसकी हर जगह को वो अपनी जगह कह सकता था, वहां कोई गोशा ऐसा न था जहां जाने से उसको रोका जा सकता हो। तो ये तबव्वाउ मिन्हा, वो मुख्तार था, मिन्हा मिस्र की सरजमीन में है हैसु यशा, जहां वो चाहे, वो मुख्तार था कि इसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। नसीबू नसीबू बिरहमतिना मन नशाउ वला नुदीउ अजरल मोहसिनीन, नसीबू हम पहुंचा देते हैं, हम मुतवज्जो कर देते हैं, बिरहमतिना अपनी रहमत से, मन नशाउ जिसको हम चाहते हैं, वला नुदीउ अजरल मोहसिनीन और हम नेकी करने वालों के अजर को जाया नहीं करते, नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ जाया नहीं किया जाता। तो इससे जो है ये बात पता चलती है कि जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वैसे ही खत्म करना चाहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जहां पे पहुंचाना था कोई उनको रोक ना सका, और अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मिस्र की सरजमीन में उनको ऐसी कुदरत, हकूमत, ताकत अता की जैसा कि बादशाह के पास होती है। तो वो जो कुछ चाहते थे वो करते थे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि पूरा मिस्र उनके जेरे नगीन था, उनके अंडर था। वला नुदीउ अजरल मोहसिनीन, नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ जाया नहीं किया जाता, नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लदीन आमनु व कानू यत्तकून, और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान लाए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे, जो ईमान लाए और फिर मुत्तकी बन गए। इससे ये बात पता चलती है कि पहली बात ये कि हमारे यहां मुत्तकीन का या मोहसिनीन का अजर मारा नहीं जाता। तो क्या अजर था जो उन्हें मिलना था? सबसे पहला अजर कि उनके भाई जो उनसे जुल्मों से कम कर रहे थे तो अल्लाह तो देख रहा था ना, तो उस अजर पर उन्होंने जो सबर किया। नंबर दो, जब वो अजीजे मिस्र के घर आए और अजीजे मिस्र की बीवी ने उन्हें गुनाह की दावत दी और गुनाह के मुकाबले में जो उनका रवैया था, पहले तो बात मानी नहीं और कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, और उसके बाद जो है वो दरवाजे की तरफ भागे। गुनाह से बचने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, पूरी कोशिश की। तो अल्लाह तो देख रहा था ना, और अल्लाह अजर कभी जाया नहीं करता। फिर तीसरी बात, वो कैद खाने में चले गए, बेगुनाह थे और कैद खाने में डाल दिए गए, और वहां भी कैसी इस्तकामत है, कैसा इखलाक है, कैसी सीरत है, कैसा किरदार है। फिर ये कि जब जेल से निकलने का वक्त भी आया तो कोई उसमें जल्दी नहीं की, और वो जेल का साथी जिसे कहा था कि जाके बादशाह से मेरा जिक्र भी करना, वो भूल गया, और वो कई सालों बाद जब आता है दोबारा कि इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अय्युहस सिद्दीक, ऐ सच्चे इस ख्वाब की ताबीर तो बता जो हमारे बादशाह ने देखा है, उसको कोई बुरा भला नहीं कहा कि तुम भूल गए, तुम्हें याद ही नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम कैसे हो। कोई गुस्सा नहीं किया, कैसा सब्र था, कैसा शुक्र था, कैसा इखलाक था। आप अपना मुहासबा करें, मैं अपना मुहासबा करूं, हमारा हाल क्या होता है। और ये है मोहसिनीन का अजर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमाते हैं कि अल्लाह मोहसिनीन का अजर कभी जाया नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उनको इतना नवाजा कि पूरा मिस्र जो था वो उनके पांव के नीचे आ गया। और रही बात आखिरत की, वला अजरुल आखिरती खैर, और आखिरत का अजर तो ज्यादा अच्छा है, خیرن، یہ اسم تفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ زیادہ بہتر ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ملا اور جو آخرت میں ملنے والا ہے آپس میں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن ملے گا کنہیں؟ للذین، ان لوگوں کو جن کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو تقویٰ. تو ایمان اور تقویٰ جو ہے یہ ایسی دو صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ نوازتا ہے، بہت دیتا ہے. تو پیاری بہنوں، میری اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس میں ہے کہ ایمان اور تقویٰ جو ہے نا، یہ اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کیا جائے. یہ دو صفات ایسی صفات ہیں جو کہ اللہ کی پسندیدہ صفات ہیں. ایمان کیسا ایمان لانا ہے؟ ان الذین آمنوا ثم استقاموا، کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، استقامت دکھائی. نمبر دو، پھر اس کے بعد جو ہے تقویٰ. اور تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے حدود کا پابند رہنا، اور جو نافرمانی والی جگہ ہیں ان سے جو ہے وہ بچ کر رہنا. تو درجات عالیہ کنہیں ملیں گے؟ جو کہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. تو یہ دو صفات ہیں جس سے انسان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ آئے. فدخلوا علیہ، اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس کے پاس داخل ہوئے. فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، مگر وہ اس سے ناواقف تھے. لیکن وہ جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے. اب کیا ہوا کہ اب یوسف علیہ السلام جب ان کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ 7 سال جو ہے وہ زمین میں خوب فصل ہونی تھی، تو آپ نے بااختیار ہو کر غلہ کاشت کروانا شروع کیا اور ساتھ ہی اس کو جمع کرنا شروع کیا. 7 سال کا وقت جو تھا وہ مصر میں کیا تھا کہ خوب غلے کی فراوانی تھی. اب بیچ میں وہ جو 7-8 سال کے واقعات ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مصر میں ابتدائی 7 سال خوشحالی کے ساتھ گزارے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ نے خوب غلہ جمع کر لیا، آئندہ جو قحط کا زمانہ تھا اس کے لیے غلہ اکٹھا بھی کر لیا. اب یہاں سے پھر بات شروع ہوتی ہے کہ قحط کا دور شروع ہو چکا ہے، اور قحط جو ہے صرف مصر میں نہیں، آس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. شام، فلسطین، اردن، اور ہر طرف جو ہے وہ قحط ہے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بڑا عقل مندی کا قدم اٹھایا تھا کہ آپ نے غلہ جو تھا وہ اکٹھا بھی کیا ہوا تھا، تو اب کیا ہوا کہ ملک میں غلہ بانٹنا شروع کیا. کیونکہ ملک میں قحط تھا، لوگوں کو جب غلہ ملنے لگا تو ہمسائے کے جو ممالک تھے انہیں بھی پتا چلا کہ مصر میں بڑا غلہ ہے، اور انہوں نے سوچا کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. اور یہی وہ وقت تھا جب فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچتے ہیں. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے پاس حاضر ہوئے. اور آپ ذرا دیکھیں، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو کنویں پھینکا تھا وہ آج اس جگہ پہنچا ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام، فعرفہم، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. ولما جہازہم بجہازہم، پھر فرمایا کہ جب تیار کر دیے ان کے لیے سامان ان کا. یہ جو جہازہم اور جہاز جو ہے ان کا ایک ہی روٹ ہے، اس کا روٹ ہے جیم ہے زے. یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کو دو آنکھوں والی ہے بھی کہتے ہیں، دو چشمی ہا. اس کا مطلب ہوتا ہے سامان تیار کرنا. اور جو سامان جو ہے تیار کر کے رکھ دیا جائے، तो उसको जो है वो जहाज कहते हैं। अच्छा, अब आप देखें ना, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि जहाज आया, जहाज गया, तो जहाज में क्या होता है? सामान होता है। इंसान जो है वो भी तो सामान ही है और दूसरा साजो सामान भी होता है। तो जहाज का लफ्ज जो है वो साजो सामान या साजो सामान की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में मैं इसकी फैमिली के दो बड़े मारूफ लफ्ज आपको बताती हूँ, जैसे जहेज। अब जहेज जो है इसका रूट भी जीम हे जे है, और जहेज में क्या होता है कि उसमें भी सामान लड़की को दिया जाता है। इसी तरह तजहीज, तजहीज और तकफीन, जब कोई मर जाता है तो उसकी जो तैयारी की जाती है तो उसके लिए भी तजहीज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि उसके कफन दफन का जो है वो इंतजाम करना। तो बहरहाल वलम्मा जहाजहुम, और जब तैयार कर दिया उनके लिए भी जहाजहिम सामान उनका, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार करवा दिया, क्या सामान था कि उनको जो है वो गल्ला दिया, जो भी खास मकदार के मुताबिक उनको गल्ला जो है वो देना था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर शख्स के मुताबिक उनको गल्ला आप देते थे। एक आदमी को एक ऊंट गल्ला जो था वो मिलता था। तो आपने उनका जब सामान उनको दिया तो काला तो कहा ईतूनी बे अखिल अखिल्लकुम मिन अबीकुम। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको, जितने वो लोग आए थे और हर एक के मुताबिक उनका गल्ला उनको दिया, यानी फी आदमी एक एक ऊंट गल्ला की कीमत देकर जब वो जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक सौतेला भाई भी है और उसका हिस्सा भी एक ऊंट गल्ला ज्यादा दे दिया जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हमारे कानून के खिलाफ है, अगर इसका हिस्सा लेना है तो वो खुद आकर लेकर जाए। तो यहां पर वही बात है कि काला कहा ईतूनी के लेकर आओ बे अखिल्लकुम अपने भाई को, मिन अबीकुम अपने बाप से, कि अपने सुतेले भाई को भी अपने साथ लेकर आओ अगर तुम्हें गल्ला चाहिए। अला तरौना अन्नी ऊफिल कैला व अना खैरुल मुनजलीन। अला तरौना, क्या तुम देखते नहीं हो? अला, आ क्या, ला नहीं, क्या नहीं तरौना तुम देखते? अन्नी के मैं ऊफिल कैला पूरा देता हूं, वफा करता हूं। अल कैल, कैल का लफ्ज जो है ये इसका रूट है, और माप कर कोई चीज देना, और ऊफी जो है इसका रूट है वफा से है, वफा या वफा करना, पूरा देना। तो मैं कैसे भर भर कर पैमाने दे रहा हूं, वह अना और मैं खैरू बेहतर ज्यादा अच्छा, अल मुंजलीन मेहमानदारी करता हूं। तो नजला जो है इसका रूट है नजला, नजला ऐसी मेहमान नवाजी के लिए कहा जाता है ये लफ्ज, जब कोई किसी के पास जाता है तो पहली दफा ही जो अच्छी अच्छा खाना या मेहमान नवाजी उसकी की जाती है उसको कहते हैं। तो मुंजिल, मुंजिल जो है मेहमानदारी करना, और मैं खूब मेहमानदारी करता हूं, मैं कितना अच्छा मेहमान नवाज हूं। तो तुम जो है वो आइंदा अपने भाई को लेकर आना, देखो मैं कितना पैमाना भर कर देता हूं, मापी हुई चीज कितनी भर भर कर देता हूं। फइल्लम तातूनी बिही, और अगर तुम उसको मेरे पास नहीं लाओगे, भी की जमीर बिन्यामीन के लिए है, अगर उसको नहीं लाओगे फला कैला लकुम इंदी, तो बस मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है। वला तकरबूनी, बस तुम मेरे करीब भी ना आना। तकरबूनी जो है नून के बाद या भी है, वला तकरबून, बस तुम मेरे करीब भी ना फटकना। तो अब जो है, अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर भाई को नहीं लाओगे तो बस मेरे पास भी ना आना। कालू, वो बोले सनुराविदु अनहु अबाहु व इन्ना लफाइलून। अब वो भाई कहते हैं सनुराविदु के हम जो हैं अनकरीब तस्करा करेंगे, हम बहलाने की कोशिश करेंगे अनहु उसके बारे में, अबाहु उसके बाप को। तो सनुराविदु, रा वो दाल इसका रूट है और इसके मानी है बहलाना, फुसलाना। तो उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद जो है ना उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, जहां तक हमारी कोशिश का ताल्लुक है हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वही नल फाइलून, और हम जो हैं वो जरूर करते रहेंगे। फाइल का मतलब होता है करने वाले को कहते हैं, ये इसम फाइल है, वह इन्ना लफाइलून, और हम जरूर ऐसा करने वाले हैं, हम जरूर ऐसा करेंगे कि वालिद को बहलाएं फुसलाएं ताकि वो हमारे भाई को हमारे साथ भेजने पर जो है वो राजी हो जाएं। तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हें कह रहे हैं कि तुम जो है अपने भाई को लाओ ताकि मैं तुम्हें और गल्ला जो है वह दूं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तरकीब और की, फकाला लिफितियान ही, और उन्होंने अपने गुलामों से कहा और उन्हें इशारा किया लिफितियान। फितियान जो है ये फतह वाहिद है और फितियान उसकी जमा है और इसके मानी है, ये नौजवान के लिए भी इस्तेमाल लफ्ज किया जाता है और इसके अलावा गुलामों के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने अपने जो गुलाम थे, नौजवान थे, नौकर चाकर खादिम गुलाम वगैरह जो शाही दरबार में मौजूद थे, उनको कहा इज अलू के रख दो विदाता हूं फी रिहाल हिम। विदाता हूं इसके मानी है कि इनकी इनकी पूंजी, इनका सामान, इनका माल, बा द्वाद ऐन जो है इसके मानी क्या है, जैसे चंद के लिए भी ये लफ्ज जो है वो बिदा का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी ये पैसे थोड़े बहुत इन्होंने दिए हैं तो वो वापस इनकी रिहाल, रिहाल के अंदर रख दो। रिहाल किसे कहते हैं आप, रेहल लफ्ज बोलती है ना कि कुरान सिपारा रेहल पर रखा जाए, असल में इसका रूट रहा लाम है, और ऊंटों पर सामान लादने के लिए जो कजावा होता है, वो जो जो है वो सामान लादने के जो थैले होते हैं, खुरजियां होती हैं, उसको कहते हैं। तो रिहाल राहलुन की जमा है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इनके जो सवारियां हैं उन पर जो कजावे हैं और उसमें जो उनके थैले वगैरह हैं या इनके जो बोरियां हैं, तो इनके जो पैसे हैं वो वापस उनके अंदर जो है वो रख दी जाए, इनकी जमा पूंजी जो है वो इनके सामान के अंदर जो है वो रख दी जाए। लाल लहुम यारिफूनहा, ताकि वो इन्हें पहचान लें। इदन कलबू, जबकि वो लौटे, जब वो वापस अपने घर जाएं और अपने रखे हुए पैसों को के वापस दे दिए गए, जब उसको पहचान ले देख लेंगे, कब इला आलिम, जब वो अपने घर जाएंगे। लालम यारिफूनहा इजन कलबू इला आलिम, के जब वो घर पहुंचकर अपना वापस पाया हुआ माल पहचान लेंगे, लालम यरजून, तो शायद ये फिर वापस आए, ये फयाजी, ये सखावत देखकर, ये हुस्ने सुलूक देखकर, ये एहसान और करम देखकर, हो सकता है ये दोबारा लौट आए। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, जब वो अपने बाप के पास गए, कौन, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस अपने बाप के पास गए, पालू उन्होंने कहा या अबाना, ऐ हमारे अब्बा जान, मुनिया मिन्नल कैलू, हमको मना कर दिया गया है अल कैल से, और कैल जो है ये पैमाने को भी कहते हैं और मापी हुई चीज को भी कहते हैं, कभी ये पैमाने के लिए इस्तेमाल होता है और कभी वो जो पैमाने से माप कर जो गल्ला वगैरह या जींस गंदम वगैरह जो कुछ दिया जाता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो भाइयों ने कहा कि हमें जो है वो गल्ला देने से मना कर दिया गया है, फरसिल माना अखाना, लिहाजा हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए, कौन से भाई को, बिन्यामीन को, नक्तल, नक्तल हम गल्ला लाए, इसका रूट क्या है, काफ या लाम, वइन्ना लहू लहाफिजून, और बेशक हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो कहते हैं क़ाला हल आमनुकुम अलैही इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीही मिन क़ब्ल, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में कर चुका हूं। और यहां पर जो है ये लफ्ज बहुत अहम है, आमनकुम, इसका रूट है हमजा मीम नून और इसके मानी है भरोसा करना, ट्रस्ट करना, इतमाद करना कि क्या मैं भरोसा करूं तुम पर, इल्ला कमा अमिन तुकुम अला अखी, जैसे कि एतबार किया था तुम पर इसके भाई के बारे में। कौन सा भाई? यूसुफ अलैहि सलाम, इन कबलू, इससे पहले। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है, अल्लाह बेहतर है निगेबानी करने वाला। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वही सब मेहरबानों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो अरहमु जो है ये भी इस्म तफसील है, ज्यादा रहम करने वाला, अर्राहिमीन, रहम करने वालों से। तो अल्लाह रहम करने वालों से बढ़कर जो है वो रहम करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना हम पर भरोसा करें। तो ये आयात क्या बता रही है कि वो बता रहे हैं कि तुमने मेरे साथ जो पहले मामला किया है तो इस तरह मैं तुम पर अब भरोसा तो नहीं कर सकता। तो इससे क्या बात पता चलती है कि मोमिन एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता। इससे क्या बात पता चलती है कि किसी पर ट्रस्ट करने के लिए ये देखना जानना जरूरी होता है कि पहले पहले उसका कैसा रवैया रहा है। तो कहा कि कैसे भरोसा करूं, इसी तरह तुम इसके भाई यूसुफ को लेकर गए थे, तुमने क्या किया था? और साथ ही कहा अल्लाह ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। वलम्मा फताहू, और जब उन्होंने खोला, मताहुम, अपना सामान, मीम ता आइन जो है इसके मानी सामान के हैं, वजदू, उन्होंने पाया, बिदअतहुम, पूंजी अपनी, पैसे अपने, माल अपना, रुद्दत इलैहिम, वापिस कर दी गई हैं इनकी तरफ। तो उन्होंने देखा कि इनके पैसे भी इन्हें वापिस कर दिए गए हैं। कालू, वो बोल उठे, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा नबगी, और क्या चाहिए? यहां पे मा जो है ये क्या के लिए इस्तेमाल हुआ है, मा नबगी, और क्या चाहिए? बगा यबगी का मतलब होता है ना चाहना। हाजी बिदातुना रुद्दत इलेना, कि देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। व नमीरू अहलना, व नमीरू, और हम गल्ला लेंगे, अहलना, अपने घर वालों के लिए। नमीरू जो है इसका रूट है मीम या रा, मीम या रा, इसके मानी है अनाज लाना। तो नमीरू, तो हम जो है गल्ला लेंगे, हम अनाज लेंगे। अरब लोग ये नाम भी रखते हैं मयार, इसमें ऐन नहीं आता, जैसे हमारे नेबर में बच्ची है और उसका नाम मयार है, ये फिलिस्तीन के रहने वाले अरब हैं और बेटी का नाम उन्होंने मयार रखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, जैसे खुराक और अनाज वगैरह। तो वन नमीरू आहलाना, और हम अपने घर वालों के लिए अनाज लाएंगे। वन नहफजू अखाना, और हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे। वन नजदादू कैला बईर, और हमें एक ऊंट भर भर कर एक ऊंट गल्ला जो है ना हमें ज्यादा मिलेगा। वन नजदादू, वन नजदादू का मतलब है और हम ज्यादा लेंगे, जे या दाल जो है इसका मतलब है, और हम ज्यादा लेंगे। कैला, कैला जो है ये माप को कहते हैं, पैमाने को कहते हैं, कैल। तो जैसे एक ऊंट भर जो है वो सामान, एक ऊंट पर जितना गल्ला आ सकता था ना, तो कहा कि उतना हमें ज्यादा मिलेगा। जरा एक भाई ज्यादा जाएगा तो एक ऊंट ज्यादा मिलेगा। और बईर जो है इसका रूट है ऐन या राम, रा, ऐन या रा। ये जो है ये इस्म जिन्स है, इस्म जिन्स है, और नौजवान के लिए भी आता है, ताकतवर ऊंट के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, ईर। तो फरमाया कि कैला बईर, के एक ऊंट भर जो है हम ज्यादा लाएंगे। तो यहां पर ईर के माने क्या है? नौजवान ताकतवर ऊंट जो कि भरकर सामान लाता है। तो एक ऊंट भर वजन जो है हम ज्यादा लेंगे। दाली का कई लोई यसीर, और इतने गल्ले का अजाफा आसानी से हो जाएगा। दाली का ये कैलुन पैमाना जो है, या जो भरकर गल्ला लाया जाएगा, कैलुन गल्ला यसीर आसानी से होगा। पाला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जो उनके वालिद थे, लन उर्सिलाहू, मैं हरगिज उसको नहीं भेजूंगा। लन जो है यहाँ पे ला भी आ सकता था, लेकिन लन जो है ये नहीं के साथ ताकीद के मानी पैदा करता है, फेल मजारे पे दाखिल होता है। लन उर्सिलाहू माकुम, मैं हरगिज उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। हत्ता तूनी मौसिकम मिनल्लाही, जब तक के तुम मुझे अल्लाह के नाम पर पुख्ता अहद ना दे दो। हत्ता हत्ता जो है ये हरफे शर्त है। हत्ता तूनी, जब तक तुम मुझे ना दे दो मौसिकन। मौसिकन जो है वो सा काफ है, और इसके मानी है पुख्ता वादा। जैसे जो है वो, जैसे तहरीर के जरिए कोई वादा किया जाता है, या कोई चीज कहीं बांध दी जाए, तो पुख्ता पक्का वादा, जब तक तुम मुझे वादा ना दे दो। मिनल्लाही, अल्लाह का, अल्लाह के नाम पर जब तक तुम मुझे पुख्ता वादा ना दे दो, मैं अपने बेटे बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। लता तुन्ननी बिही, लता तुन्ननी कि तुम जरूर ब जरूर लेकर आओगे मेरे पास बिही इसको। तो लाम लाम ताकीद है, नून पर शद भी ताकीद के लिए आई है कि तुम जरूर ब जरूर ले आओगे मेरे पास। और इसमें रूट क्या है? हमजा ताया, तो बा साथ आ गया, तो मानी लाने के हो गए। जब तक के तुम इसको मेरे पास लेकर आने का अल्लाह का पुख्ता वादा ना दे दो, मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। इल्ला अन युहाता बिकुम, इल्ला ये कि तुम कहीं घेर ही लिए जाओ। करनी ऐसी हो, अब अल्लाह की तरफ से ऐसा हो जाए कि तुम्हें कहीं तुम्हारा जो है कोई जो है तुम्हें अरेस्ट कर ले या तुम्हें घेर ले। तो युहाता जो है इसका रूट है हा वो तोए हौत, इसी से अहाता है और घेराव करना। फलम्मा, फिर जब आताउहु, फिर जब दिया उन्होंने मौसिकहुम पुख्ता अहद अपना, काल अल्लाहु, काला कहा, अल्लाहु अला मा नकूलु वकील, कहा कि देखो हमारे इस कॉल पर अल्लाह निगेबान है कि जो कुछ तुम कह रहे हो इस पर जो है मैं अल्लाह को जो है वो अपना वकील बनाता हूँ। वकील का मतलब क्या होता है? कि किसी को, किसी के सपुर्द अपना मामला कर देना। तो ये पूरी कोशिशें करने के बाद उन्होंने अपना मामला जो है वो अल्लाह के सपुर्द कर दिया। अब आप देखें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं बेटे को भेज रहे हैं, और इस मौके पर जो है उनको नसीहत करते हैं, क्योंकि उनकी इजाजत मशरूत थी, अल्लाह के नाम का वादा लिया है, और उसके साथ जो है अब हदायत करते हैं। और मुफस्सरीन कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को बिन्यामीन को इनके साथ भेज रहे थे, तो पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजर रही थी, उनके दिल में कैसे कैसे अंदेशे आ रहे थे, और पता नहीं किस तरह से वो सोच रहे थे कि अल्लाह जाने भी इस बेटे की शक्ल भी देख सकूंगा कि नहीं। तो इसलिए वो अपनी हद तक तमाम एहतियातें जो थे वो कर रहे थे, जितनी एहतियात कर सकते थे। और कहते हैं कि उस जमाने के हालात भी ऐसे थे कि आजाद कबायली इलाके के ये रहने वाले लोग थे, क्योंकि मिस्र की सल्तनत पर ये लोग जो थे ये कबायली इलाके के लोग थे, और वैसे भी खूबसूरत थे, नौजवान थे, ऊंचे लंबे थे, ऊंचे लंबे। अब ऊंचे लंबे हैं, खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, तो सेहतमंद हैं, अच्छा लिबास पहनते थे, تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبھی میرے بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں تو کسی کی کہیں نظر ہی نہ لگ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ، کیونکہ قبائلی علاقوں کے رہنے والے لوگ جو تھے، ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے لوٹ مار کی غرض سے بھی جاتے تھے کہ کہیں ان کو لوگ ڈاکو سمجھ کر ہی پکڑ نہ لیں، کہیں گھیر نہ لیں ان کو. اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مصر کے چار دروازے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت مصر کے مختلف دروازے تھے، یعنی مختلف دروازے تھے جس سے لوگ جو تھے وہ مصر کے اندر داخل ہوتے تھے. تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ نصیحت کی، کیا کہا؟ فقال یا بنیا، کہا کہ اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، کہ اے میرے بچوں دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لا تدخلوا داخل نہ ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، باب کا روٹ ہے با وو با باب اس کا روٹ ہے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ودخلوا اور سب تم داخل ہونا، من ابواب مختلف دروازوں سے، ابواب جو ہے یہ اس کی جمع ہے کہ تم جو ہے وہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. متفرقہ، متفرقہ جو ہے فارا قاف اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہے مختلف، ڈفرینٹ، کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم کو جو ہے وہ اللہ کی مشیت سے بچا نہیں سکتا. وما اغنی، اور نہیں میں غنی کر سکتا، انکم تم سے، من اللہ سے، اللہ کی، من شئن کسی بات سے. تو اگر اللہ ہی کی طرف سے کوئی مشکل پریشانی آنے والی ہے تو میری یہ جو نصیحت ہے، میری یہ جو وصیت ہے، تو میں اسے بچا نہیں سکتی. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے، جس طرح ان کے والد نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، تو جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو ہے مختلف دروازوں سے داخل کرنے کی، داخل ہونے کی نصیحت کی تھی، وہ اسی طرح مختلف دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے حکم دیا تھا. ما کان یغنی عنہم، لیکن ان کو جو ہے وہ بچا نہ سکی ان کو، من اللہ من شئین، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں. شئین کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت. تو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تدبیر انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے سکی، انہیں بچا نہ سکی. الا حاجتن، مگر ایک خواہش تھی، مگر ایک بس جیسے ضرورت تھی، فی نفس سے ان کے نفس میں، ان کے دل میں ایک کھٹک تھی، ان کے دل میں جیسے وہ دل تھا نا بے چین تھا، تو انہوں نے اپنے دل کی بے چینی اور کھٹک کو دور کرنے کے لیے جو تدبیر کی تھی وہ ان کو بچا نہ سکی، بس وہ ایک خواہش تھی ان کی، اس کو انہوں نے پورا کیا. الا حاجت ان فی نفس یعقوبہ قضاها، قضاها بس انہوں نے اپنی اس خواہش کو پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّي مَا عَلَّمْنَهُ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لذو علم، صاحب علم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ علم تھا، لما جو کچھ، علمناہ جو ہم نے اس کو سکھایا تھا، تو ہم نے ان کو، ہم نے ہماری دیوی تعلیم کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ساری تدبیر کی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. تو یہاں پہ اہم بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک ہے تدبیر اور ایک ہے توکل، تو اس میں توازن ضروری ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے، تو انہوں نے اپنی عقل، فکر، تجربے کے مطابق پوری تدبیر کی. پہلے بیٹوں کو ان کا جرم یاد دلایا، ان کا محاسبہ کیا کہ دوبارہ جرم کرنے کی جرت نہ کریں، اللہ کے نام پر وعدہ لیا کہ وہ سوتیلے بھائی کی حفاظت کریں گے. پھر سیاسی حالات، یا ویسے کہ بچے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، جوان ہیں، اونچا قد ہے، کہیں لوگ جو ہیں ان کو پکڑ نہ لیں، گرفتار نہ کر لیں، یا ایک ہی باپ کی اولاد ہے اور اتنے زیادہ ہیں اکٹھے ہی 11 بھائی، تو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، لوگ حسد نہ کرنے لگ جائیں. تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوری پوری جو ہے وہ تدبیر کی، اور پھر ان کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی حفاظت نے دیا. اپنی تدبیروں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میں جو ہوں وہ تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں. قال اللہ علی ما نقول وکیل. اور یہ کہا کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اچھا، یہاں پر جو ہے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نظر جو ہے نا، نظر لگ جاتی ہے، اور جو حسد کی نظر ہے وہ لگ جاتی ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ نظر جو ہے، یہ جو حسد کی نظر ہوتی ہے یا کسی کی بری نظر ہوتی ہے، تو کہا کہ وہ لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور نظر لگنے سے پناہ مانگا کرتے. جب معوذتین نازل ہوئی تو سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دم کرنے لگے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نظر جو ہے، حسد کی نظر، بری نظر، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معوذتین پڑھ کر جو ہے وہ دم کرنا چاہیے. کیونکہ جو معوذتین پڑھ کر دم کرتا ہے تو کسی کی جو بری نظر ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے. پھر اسی طرح ہمیں ایک اور بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، اس میں من کل عین لاما بھی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اپنے صحابہ کو نظر بد سے بچنے کی جو تھے وہ دعا پڑھنے کے لیے کہتے تھے نا. جیسے ہمیں اس سلسلے میں بخاری کی حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، ان پر دعا پڑھتے تھے. اور یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن پر پڑھتے تھے اور حضرت حسین پر پڑھتے تھے، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے میں تمہارے لیے پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان سے، وہامہ اور تکلیف دینے والے جانور سے، ومن کل عین لامہ اور ہر نظر لگنے والی آنکھ سے. تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے جب بچہ پیدا ہو، تو والد، والدہ، جو بھی قریبی لوگ ہیں انہیں پڑھ کر बच्चे के ऊपर जो है वो फूंक मारनी चाहिए, दम करना चाहिए। सहाबाए कराम में सहल बिन हुनैफ का वाकया मशहूर है। उन्होंने एक मौके पर गुसल करने के लिए कपड़े उतारे तो उनके सफेद रंग तंदुरुस्त बदन पर आमिर बिन रबिया की नजर पड़ गई और उनकी जबान से निकला कि मैंने आज तक इतना हसीन बदन किसी का नहीं देखा। ये कहना था कि फौरन सहल बिन हुनैफ को सख्त बुखार चढ़ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो आपने ये इलाज तजवीज किया कि आमिर बिन रबिया को हुक्म दें कि वो वुजू करें और वुजू का पानी किसी बर्तन में जमा करें, ये पानी सहल बिन हुनैफ के बदन पर डाला जाए। ऐसा ही किया गया तो फौरन बुखार उतर गया और वो तंदुरुस्त होकर फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुहिम पर रवाना हो गए। और आपने आमिर बिन रबिया को ये तंबीह की कि कोई शख्स अपने भाई को क्यों कत्ल करता है, तुमने ऐसा क्यों ना किया कि जब इनका बदन तुम्हें खूब अच्छा नजर आया तो तुम बरकत की उसके लिए दुआ करते, क्योंकि नजर का असर हो जाना हक है। इस हदीस से ये पता चलता है कि जब किसी शख्स को किसी दूसरे की जान माल में कोई अच्छी बात नजर आए, कोई ताज्जुब वाली बात नजर आए, तो उसको चाहिए कि उसके वास्ते दुआ करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकत अता करे। जैसे हमें ये दुआ सिखाई गई है, माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इससे जो नजरे बद है इसका असर जो है वो जाता रहता है। तो ये बात याद रखें कि नजरे बद या हसद की नजर ये लग जाती है और इससे जो है नुकसान पहुंचना हक है। और क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, हमें मुआवज़ातैन पढ़ना चाहिए, हमें जो है अऊज़ु बिल्ला पढ़ना चाहिए, आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, अभी मैंने आपको जो दुआ बताई वो पढ़नी चाहिए। अच्छा, किसी की कोई अच्छी चीज देखें, किसी का हाफ़ज़ा बड़ा अच्छा है, किसी ने रोड टेस्ट पहली दफा में पास कर लिया, खाना बड़ा अच्छा पकाती है, उसके बच्चे बड़े अच्छे हैं, आप सबके बच्चों ने जो है वो इम्तहान दिया लेकिन किसी का बच्चा मेडिकल में चला गया, तो अब हसद नहीं करना चाहिए। बस अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह की अनायत है, अल्लाह ने किसी को दी है, तो माशाल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो अपना मामूल बना लेना चाहिए। इसलिए कि हसद करना जो है ना, ये शैतान की खूबी है, नेक लोगों की ये खूबी नहीं है, ये उनकी अच्छी बात नहीं है कि वो हसद करने लगे, और ना ही किसी को बुरी नजर से देखना। तो लोगों को, जब लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है, किसी का कारोबार बड़ा अच्छा है, आपने भी जो डिग्री आपके पास है दूसरे के पास भी है, लेकिन उसकी बड़ी अच्छी जॉब है, उसको मिल जाती है, आपको नहीं मिलती, आपके बच्चे जवान है, दूसरों के भी जवान है, उनके बड़े अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, आपके पास रिश्ता नहीं आ रहा। इसी तरह किसी के बच्चे का जहन अच्छा है, किसी का बच्चे का जहन अच्छा नहीं है, मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। किसी की शादी हुई और उनके औलाद हो गई और किसी के औलाद ही नहीं है, तो मुख्तलिफ हो सकती है, माल औलाद जॉब इम्तहान डिग्रियां दुनिया का जो कुछ भी माल असबाब है। तो इस सिलसिले में अगर आप किसी को देखें कि किसी के पास अच्छी चीज है तो उसके लिए जो है वो दुआए खैर करें, उसके लिए जो है वो कहें कि अल्लाह इसको और दे, और अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह जिस तरह इसको दिया मुझे भी दे, और इसका जो रिज्क है माल है औलाद है जहन है इसमें बरकत दे। कभी हसद नहीं करना चाहिए क्योंकि हसद करना हराम है, और हसद जो है वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कि आग लकड़ियों को खा जाती है, आग लकड़ियों को जला कर रख देती है। तो इंसान जो नेकियां करता है वो सारी की सारी जो है वो जाया हो जाती है। तो ये है असल बात जो कि हमें भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम जो हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको ये अल्लाह ताला के अहकामात का इल्म भी होता है और उसके बाद भी जो है वो हसद करते हैं। और एक बात ये भी पता चलती है कि जो है वो जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तदबीर की है तो इस तरह तदबीर भी करनी चाहिए। अगर आपको पता हो कि कोई आपसे और आपके घर वालों से, औलाद से या शोहर से या किसी से हसद करता है और आपके बारे में उसके रकीबाना जज्बात हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि उसको वो सारी बातें इस तरह से बताएं कि फिर हसद की आग जो है वो और भड़क उठे। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 69 है, वलम्मा दखलू अला यूसुफा, और जब ये भाई जो थे 11 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, आवा आवा इलेही अखाहू, आवा उन्होंने पनाह दी, उसने जगह दी, इलेही अपने पास, अखाहू अपने भाई को, कौन थे भाई? बिन्यामीन। तो उन्होंने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास अलग बुला लिया, काला उसे कहा, इन्नी अना अखू का, कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा वही भाई हूं, कौन? यूसुफ। फला तबतइस बिमा कानू यअमलून, अब तो उन बातों का गम ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। तो अब आप देखें कि एक आयत में अल्लाह ताला ने सारी दास्तान को समेट कर रख दिया। 21-22 साल बाद ये भाई आपस में मिले हैं, और आप सोचें कि बिन्यामीन ने अपने सुतेले भाइयों के बारे में क्या क्या बताया होगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या सलूक किया। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको तसल्ली देते हैं, फला तबताइस, और इसका रूट है बा हमजा सीन, जैसे बेसा बुरे के लिए भी आता है, बासा जंग, भूख, तंगदस्ती, बीमारी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो फला तबताइस कि अब तू जो है अफसोस ना कर, अब बुरा ना मान, अब जो है गम ना कर, बिमा कानू या मलू, जो ये लोग करते रहे। फलम्मा जहाजहुम बे जहाजहिम, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जहाजहुम तैयार कर दिया, बे जहाजहिम इनके सामान को, तो वो जो उनका सामान जा रहा था, वो गल्ला वगैरह जो ऊंटों पर लादा जा रहा था, तो जब उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो लदवाने लगे, तो जालत सिकाया था फी रहले अखी, तो उन्होंने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। यहाँ पे सिकाया का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, या पहले भी पढ़ चुकी हैं, सीन काफ और या इज़िस्तस्का, आपने पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने पानी मांगा, इज़िस्तस्का मूसा ले कौम ही, और आपने सक्का पढ़ा था, सिकाया पढ़ा था, फिर सिकाया का लफ्ज जो है आप पढ़ रही हैं, और आपने सूरत यूसुफ में भी पढ़ा था कि क्या था, कि मतलब वो पानी लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, फअदला दलवा, कि उन्होंने अपने डोल को डाला था। तो सक्का या सिकाया या इज़िस्तस्का, इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और सिकाया जो है ये प्याले को कहते हैं। कौन से प्याले को कहते हैं? ऐसा प्याला जिसमें जौहरात जो है वो जड़े हुए हों, ऐसे प्याले के लिए सिकाया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हीरे जौहरात जो हैं वो लगे हुए हों। अगर प्याला शीशे का हो तो उसको कदहुन कहते हैं, काफ दाल हा, अगर लकड़ी का हो तो उस कहते हैं, चमड़े का हो तो अलबाह कहते हैं, और मट्टी का हो तो मरकन कहते हैं। लेकिन सारों को छोड़ दें, बस इतना याद रखें कि सिकाया जो है ऐसे प्याले को कहते हैं जिसमें जौहरात जो है वो जड़े हुए हों। तो चूंकि बादशाह का प्याला था, बड़ा ही कीमती प्याला था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान में अपना प्याला जो था वो रख दिया। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा, तो अज़्ज़न जो है, अज़्ज़ना इसके मानी है पुकारना, फिर पुकारा मुअज्जिनुन एक पुकारने वाले ने, क्योंकि अजान जो है वो कान पर हाथ रखकर दी जाती है, तो ऊंची आवाज में बुलाना, पुकारना। अब एक मनादी करने वाले ने मनादी की, एक पुकारने वाले ने पुकारा, अय्यतुहल ईरू, ए काफले वालो। और मैंने आपको अभी बताया था कि ईर का लफ्ज जो है ये इस्म जिन्स है, ये एक ऊंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और उन तमाम ऊंटों के लिए जो बहुत से ऊंट हैं और वो गल्ला लेके जा रहे हैं, एक ऊंट भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, ये इसम जिन्स है, नौजवान ताकतवर ऊंट। जो कहीं से गिजा का सामान लाते ले जाते हैं। तो अय्यतुहल ईरू, ए काफले वालो, क्योंकि ऊंटों ऊंट थे, सामान लदा हुआ था, वो जा रहे थे, इन्नकुम लसारिकून, तुम तो चोर हो। जब सरकारी मुलाजमों ने ये देखा कि हमारा जो बादशाह है उसका प्याला नहीं मिल रहा, तो उन्होंने उनमें से एक मनादी करने वाले ने पुकारा कि ए काफले वालों तुम तो चोर हो। कालू, वो बोले, वह अकबलू अलैहिम, और उन्होंने वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्होंने पलट कर उनकी तरफ तवज्जो करके, वह अकबलू, जिन्हें रुख उनकी तरफ कर लिया और कहने लगे, माजा तफ्तेदून, क्या चीज है तुम्हारी जो गुम हो गई है। फे क़ाफ़दाल, इसका मतलब होता है फुकदान होना, कमी होना, खो जाना, गुम हो जाना, तो क्या चीज तुम्हारी गुम हो गई है। कालू, वो बोले, नफ्तेदू, नफ्तेदू के खोया गया है, नहीं मिलता, सुआल मलिकी, बादशाह का पैमाना, बादशाह का जो गिलास है या प्याला है वो हमें नहीं मिल रहा। और यहां पर जो है सुआ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका रूट है स्वाद वो और ऐन, स्वाद वो ऐन। तो ऊपर आपने सिकाया पढ़ा था ना, और सिकाया किसे कहते हैं, सिकाया यानी पीने का गिलास, कि कोई भी प्याला जिसमें पानी पिया जाता है, लेकिन ऐसा प्याला जो कि जिसमें हीरे जोहरात लगे हुए हों, तो उनको जो है वो स्वा कहते हैं, स्वाद वो और ऐन, यानी कीमती प्याला। ऊपर मैंने प्याले के लिए आपको कई लफ्ज बताए ना, और यहाँ पर जो है वो स्वा का लफ्ज है, जो कि कीमती प्याला है, शाही बड़ा प्याला। तो उन्होंने कहा कि नफ्तदू सुआल मलिकी, कि हमको बादशाह का जो जोहरात जड़ा हुआ प्याला है वो नहीं मिलता, वले मन जा बही, और जो कोई इसे लाकर देगा, हिमलो बईरिन, तो उसके लिए जो है वो हिमलू, हिमलू का मतलब है बोझ है, बईरिन ऊंट का, तो उसके लिए एक ऊंट का बोझ, एक ऊंट के बराबर गल्ला जो है वो इनाम है, वह अना भी जईम, और मैं इसका जिम्मा लेता हूं, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जईम जो है ये फईल के वजन पर है, और इसके मानी होते हैं जमानत देना, जे ऐन मीम, जिम्मेदारी लेना, जामिन बनना। कालू, वो बोले, ताल्लाही, अल्लाह की कसम, ता यहाँ पे हर्फ कसम है, अल्लाह की कसम, लकद अलिम तुम, अलबत्ता तहकीक तुम जानते हो, मा जेना, हम नहीं आए, ये नुफ्सदा फिल अर्दी, कि हम जमीन में फसाद करें। यहाँ पे फसादा जो है ये चोरी डाके के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो कहने लगे कि हम इसलिए थोड़ी आए कि यहाँ आके चोरी करते या डाका डालते, वमा कुन्ना सारिकीन, और ना ही हम चोरियां करने वाले हैं। सीन राकाफ, इसके मानी होते हैं चोरी करना। पालू, वो बोले, फमा जजा उहू इन कुंतुम काजिबीन, उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी ये बात झूठी निकली, इन कुंतुम काजिबीन, अगर हो तुम झूठे, फिर तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। पालू, वो बोले, जजा उहू, उसकी सजा है, मम वजदा फी राहलही, जिसके सामान में से वो प्याला निकले, फाहुआ जजाउहु, तो वही उसका बदला है, कि जिसके सामान में से वो प्याला सुआ निकल आए, तो उसे ही सजा के तौर पर रख लिया जाए, फाहुआ जजाउहु, तो उसे ही सजा के तौर पर रख लिया जाए, कज़ालिका नज़्ज़ी ज़ालिमीन, और हमारे यहां तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे ये बात आप याद रखें कि जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम जो थे और उस वक्त जो बादशाह का कानून था उसमें ये नहीं था कि जो चोरी करे तो उसको ही जो है वो चोरी की सजा के तौर पर रख लिया जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि ये याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चोरी की सजा थी कि अगर कोई जो है वो चोरी करे तो चोर को उस शख्स की गुलामी में दे दिया जाए जिसका माल उसने चुराया हुआ हो। तो मिस्री कानून जो था उसमें चोर को जेल होती थी, लेकिन यहां पे क्या था कि जिसने जो है वो चोरी की है और जिसकी चोरी की है उसको उसकी गुलामी में दे दिया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने जो उनकी अपनी अपना जो शरीयत थी उसके कानून को उन्होंने बताया कि कज़ालिका नज़ी ज़ालिमीन फबदा, फिर पस उन्होंने शुरू किया, बदा पस देखना शुरू किया, भी ओए आते हिम इनकी बोरियों को। यहां पर जो है ये भी ओए आते हिम जो है इसका रूट है वो एन या, इसका मतलब होता है याद रखना और व्या व्या विया वो ऐन अलिफ हमजा, व्या उनकी जमा है ओया, और व्या उसको कहते हैं जैसे कोई थैली हो जाए, कोई बोरी हो जाए, या ऐसा कोई चीज हो कि जिसमें जो है वो कोई चीज हिफाजत से रख ली जाए, कोई चीज जो है वो अच्छे से रख ली जाए। जैसे बाज़ औक़ात बोरी के अंदर या जो होती है खुरजी या बोरी या थैला उसमें चीज को हिफाजत से रखा जाता है। और कुरान में कानों के लिए भी लफ्ज आया है उज़ुनुम वाया, ऐसे कान जो बात को याद रखते हैं। तो विया जो है बर्तन सामान बोरी खुरजी जिसमें चीज को हिफाजत से रखा जाता है। तो विया जो है ये वाहिद है और ओया जो है ये इसकी जमा है। तो ये ओया है ना, तो अब क्या हुआ कि उनका वो जो सामान था ना जिसमें अनाज बांध कर उनके ऊंटों पर रखा हुआ था, अब उसकी तलाशी लेने लगी, तलाशी ली जाने लगी। फबदा पस शुरू कर दिया भी ओए आते हैं इनकी खुरियों की तलाशी कबला वियाए अखी ही, भाई की बोरी की तलाशी से पहले। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहले बिन्यामीन के जो सामान था ना उसकी जो खुरजी थी या उसकी जो बोरी थी उसके सामान की तलाशी से पहले दूसरे भाइयों की खुरजियों की तलाशी लेने शुरू की। कज़ालिका किदना ले यूसुफा, फिर इस तरह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की। किदना जो है इसका रूट है काफिया दाल, कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की। किदना का मतलब क्या है कि हमने तदबीर की। तो ये जो तदबीर थी ये किसने सिखाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाई। मा काना लियाखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिकी इल्ला अन यशा अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये काम ना था कि बादशाह के दीन में मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला अन यशा अल्लाह, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो अपनी प्लानिंग थी या अपनी उनकी जात थी वो अपनी प्लानिंग से या अपने इख्तियारात से ऐसा नहीं कर सकते थे कि अपने भाई को रोक लेते या रख लेते। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये तदबीर की। नरफाउ दरजात मन नशा, हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। वफाउ का कुल जी इल्मिन अलीम, और एक इल्म रखने वाले के ऊपर भी एक इल्म रखने वाला है, वफाउ का और ऊपर है। कुल जी इल्मिन अलीम, हर साहिब इल्म के और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला जो है वो बढ़कर है। तो अब यहां पर जो है ये बात पता चलती है कि اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ تدبیر بتائی کہ وہ اپنے پیالے کو ان کے سامان میں رکھ کر یہ ہیلا پیدا کریں تاکہ اپنے بھائی کو روک سکیں. تو یہاں پر جو ہے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں, جیسے توریا کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کسی مصلحت کی خاطر جو ہے وہ کوئی ایسا ہیلا اختیار کرنا کہ جس سے جو ہے وہ شریعت کے احکام تو نہ بدلیں لیکن یہ کہ وہ کام ہو جائے. کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں اس کو ہیلا شریعہ, یہ شرن جائز ہے. شرط یہ ہے کہ شرعی احکامات جو ہیں وہ بدل نہ دیا جائے. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر وہ ہیلا کرتا ہے تو یہ حرام ہے. اگر کوئی رمضان کے روزوں سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ روزے چھوڑنے کی گنجائش نکل آئے تو یہ بھی حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے ہیلے کرنا تو حرام ہے کیونکہ اس سے جیسے ایک فرض سے جو ہے وہ بچنا ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ جو ہیلا اختیار کیا گیا یہ ایک طرح کا توریہ تھا, اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ہیلا کرنا جو تھا یہ سکھایا تھا. اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور ایک اس کے پیچھے تھا. تو جو بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے آدمی آ رہا ہے نا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا میں یہاں سے گزرا ہوں, تو جب آپ سے وہ پوچھے تو آپ اسے کہ میں یہاں سے نہیں گزرا نا. تو اب وہ شخص یہ کہہ کے چلا گیا اور اتنے میں جو قتل کرنا چاہتا تھا وہ بھی پیچھے بھاگتا ہوا آیا. تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہاں سے اس طرح کا آدمی نشانیاں بتائیں کہ گزرا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کیا کہ جو پہلا آدمی کہہ کر گیا تھا نا بتائے نہیں, تو جس جگہ کھڑے تھے نا اس جگہ سے آپ ہٹ گئے, ہٹ کر تھوڑا سا ادھر ہو گئے. اور اس شخص نے جو بعد میں آیا تھا اس نے جب پوچھا کہ کیا یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے, تو انہوں نے کہا جب سے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے اس آدمی کو گزرتے ہوئے جو ہے وہ نہیں دیکھا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہ بھی ایک ہیلا تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ کیا تاکہ دوسرا جو ہے وہ اس پر ظلم نہ کر سکے یا زیادتی نہ کر سکے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی تاکہ اپنے بھائی کو باعزت طور پر اپنے پاس رکھ سکیں, کیونکہ ملاقات کے طور پر ملاقات جب ان کی بنیامین سے ہوئی تھی تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ بنیامین پر ان کے بھائی بہت جو ظلم کرتے ہیں اور جو ان کو ستاتے ہیں. تو یہ تدبیر اللہ نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی خاطر پیدا کر دی تھی. کیوں؟ وہ ہر صاحب علم سے بڑھ کر علیم ہستی ہے, تو اللہ کے پاس وہ جو علم ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. تو یہاں پہ بھی اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے جو ہے وہ بالا تر ہے. قالو, ان بھائیوں نے کہا, ای یسرق, اگر یہ چوری کرے. اب بھائی بولے کہ اگر بنیامین چوری کرے, فقط سرخ اخ اللہ من قبل, تو کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اب انہوں نے جیسے اپنے اوپر سے الزام ہٹانے کے لیے, اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ ہم چور تھوڑی ہیں, اگر ہمارے بھائی کی خرچی سے پیالہ نکل آیا ہے تو ہم نے چوری نہیں کی. انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بھائی سے اب الگ کر لیا, کہا کہ اس کے بھائی نے اب بتا دیا کہ یہ ہمارا ستیلا بھائی ہے اور اس کے بھائی نے پہلے چوری کی تھی, اب اپنے پاس سے بات بنا کر. فاثر رہا یوسف فی نفسہ, اور یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ پی لیا. فاثر رہا, انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ مخفی رکھا, چھپا لیا. فاثر رہا, پس وہی पी गए यूसुफु यूसुफी नफसे ही अपने दिल में, वलम युब्दी युब्दी हा लहुम, वलम युब्दी हा और नहीं इसको जाहिर किया लहुम उन पर, और हकीकत उन पर न खोली। पाला कहा अन तुम शर्म मकाना के बड़े ही बुरे लोग हो तुम, के मुंह दर मुंह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, और जो इल्जाम तुम लगा रहे हो अल्लाह इसकी हकीकत को खूब जानता है। तसिफून जो है इसका रूट है वो स्वाफा और इसके मानी है वस्फ बयान करना। तो कहा कि जो कुछ तुम कर रहे हो, जो बात भी जो इल्जाम तुमने लगाया है, तो इसकी हकीकत को अल्लाह जो है वो खूब जानता है। इससे क्या बात पता चलती है? इससे ये बात जो है पता चलती है कि उन्होंने जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब चोरी का इल्जाम लगाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ कि कैसी इन्होंने जो है वो गलत बात की है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उसको दिल में पी गए और कहने लगे कि बड़े ही बुरे लोग हो तुम। शर्म जो है ये भी सब तफसील है कि तुम मेरे मुंह दर मुंह जो है वो इल्जाम लगा रहे हो। पालू वो बोले या अय्युहल अजीजु, ए अजीज ए सरदारे जी इक्तदार, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरन, बेशक इसका बाप बाप बहुत बूढ़ा आदमी है। यहाँ पे शेखन जो है ये बूढ़े के लिए आया है कि इनका बाप जो है बूढ़ा आदमी है। फखुज अहदना मकानहू, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए। इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, हम आपको बड़ा ही नेक इंसान जो है वो पाते हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो खुशामद करने लगे और उस जमाने में खास सरकारी खिताब था अजीज, क्योंकि मिस्र के आला सरकारी ओहदों के लिए मखसूस था। और अब ये जो है वो दरखास्त करने लगे, खुशामद करने लगे। पाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। आप पीछे शुरू में आपने तावज जब पढ़ा था आउजू, तो उसका रूट भी यही था ऐन वो जाल, और इसके मानी है कि पनाह मांगना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। अन्ना खुजा कि हम ले लें, इल्ला मम वजदना मताना इंदहू, कि जिसके पास हमने अपना माल पाया है इसको छोड़कर हम किसी दूसरे को ले लें, इससे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। माज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। अन्ना खुजा कि हम पकड़ लें, इल्ला मगर नहीं, मगर उसी को, मम वजदना कि जिसके पास हमने पाया, मताना अपना प्याला, इंदहू उसके पास, तो उसको छोड़कर अगर हम किसी और को पकड़ लें तो फिर तो ये जुल्म होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे छोड़कर किसी और को अपने पास ले लें। इन्ना इज़ल्ला ज़ालिमून, अगर हम ऐसा कर लें तो फिर हम तो जालिम होंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो बिन्यामीन की बजाय दूसरे भाइयों में से किसी को अपने पास रखना जो है उससे माजरत कर ली और कहा कि हम इस मैं इससे जो है वो अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका जो कहना था उससे उन्होंने जो है वो माजरत कर ली। तो अब तक जो है जो सबक पढ़ा है इससे हमारे सामने अमल के क्या उसूल निकलते हैं, उनका जो है वो उनको दोहरा लें, उनको आप देख लें। इसमें पहली बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने दामन को गुनाहों से बचाते हैं और गुनाहों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, تو اللہ ان کو دنیا میں ان کی نیکی کا بدلہ دیتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو دیا. اور دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ کسی پر اگر الزام لگے، اور بعض اوقات جو ہے ساری دنیا بھی اس کو برا کہے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کی پاک دامنی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ کسی بھی اہم ذمہ داری کے لیے، جو اہم ذمہ داری ہے اس کے لیے آپ کے اندر دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک حفیظن اور دوسرا علیم، ایماندار، اور پھر یہ کہ جو ہے وہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ، جیسے اس کا پھر علم ہونا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈرائیونگ سکھاتے ہیں، اور ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے جا رہے ہیں اور آپ کو آتا ہی نہیں کہ صحیح سے سکھانا کیسے ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور ایک بات ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ نظر سے بچانے کے لیے جو ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، بچنے کے لیے بھی اور بچانے کے لیے بھی، کیونکہ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگی، جادو آپ پر ہو گیا، اور صحابہ کرام پر بھی. تو نظر بد سے بچانے کے لیے ہمیں اور بچنے کے لیے دعا ضرور پڑھنی چاہیے، یاد کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اصل وکیل اپنا اللہ کو بنانا چاہیے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ایسے حالات اور وسائل پیدا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات سے نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جائے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو ہے وہ جو کردار ملتا ہے، جو بہترین اسوہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جو ہے وہ اپنانے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.